Today we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 4, text number 3.
तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 3 का.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
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 सतल्पतूर्णम उत्थाय.
सतल्पतूर्णम उत्थाय.
कालोयम् इति विमलः.
कालोयम् इति विह्वला.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
प्रक्षालन् मुक्तमूर्धजः.
प्रस्खलन् मुक्तमूर्धजः.
सतल्पतूर्णम् उदय.
सतल्पतूर्णम् उत्थाय.
कालोयम् इति विमला.
कालोयम् इति विमला.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
शस्खलन् मुक्तमूर्धजः.
प्रस्खलन् मुक्तमूर्धजः.
सतल्पत् तूर्णम् उत्थाय.
सतल्पतूर्णम् उत्थाय.
कालोयम् इति विह्वला.
कालोयम् इति विह्वला.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
शुचिगृहम् अगतूर्णम्.
प्रक्षालन् मुक्तमूर्धजः.
प्रस्खलन् मुक्तमूर्धजः.
नेक्स्ट् बोलो.
सतल्पतूर्णमुत्थाय.
सतल्पतूर्णमूर्धय.
कालोयम् इति विवला.
कालोयम् इति विवलः.
सूतिगृहम् अगतूर्णम्.
सूतिगृहम् अगतूर्णम्.
प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज.
प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज.
सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विवला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज. सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विवला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज. सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विवला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज. सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विवला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज. सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विवला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज. सतल्पतूर्णमुत्थाय. कालोयम् इति विमला. शुचिगृहम् अगतूर्णम्. प्रस्खलन् मुक्तमूर्धज.
Translation. Kamsa immediately got up from bed, thinking, "Here is Kala, the supreme time factor, which has taken birth to kill me."
Kans turant hi bistar se yah sochte hue uth khada hua. यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है.
Thus overwhelmed, Kamsa, his hair scattered on his head, I once approached a place where the child had been born.
इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था.
श्री प्रभुपाद की जय. Let us recite the Guru Parampara Params, please. It is entitled The Atrocities of King Kamsa.
तो इस अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार.
Atrocities means something terrible.
तो अत्याचार का मतलब है बहुत ही खतरनाक.
Generally means activities carried out by demons.
और साधारणतः इसका मतलब होता है ऐसे कार्य जो कि राक्षसों द्वारा किए जाते हैं.
Such as the murdering of the Jews by Hitler.
जैसे कि हिटलर ने जो ज्यूज थे उनका वध किया था.
This kind of action is called atrocities, very terrible.
तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उसको अत्याचार कहा जाता है. बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घृणित होते हैं.
Even the non-devotees will use this word atrocities on relationship to actions of extremely evil demons.
तो जो अभक्त भी हैं वो भी इस शब्द का अत्याचार शब्द का इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो कि असुरों द्वारा किया जाता है.
So Kamsa has already killed 7 of Devaki's babies.
तो अभी तक कृष्ण ने देवकी के 7 बच्चों का वध कर दिया है.
Of course, this whole scenario is taking place under Yoga Maya.
तो हालांकि ये जो सारा लीला है वो योग माया के अंतर्गत हो रहा है.
Practically speaking, only Narada Muni knows what's going on.
अगर वास्तव में कहें तो सिर्फ नारद मुनि को पता है कि क्या हो रहा है.
Narada Muni is Trikalagya.
क्योंकि जो नारद मुनि है वो त्रिकाल यज्ञ है.
You know the meaning, past, present and future.
आपको पता है इसका मतलब वो जो कि
He knows everything.
भूत वर्तमान भविष्य सब
कुछ जानते हैं. He is the top, one of the top leading Vaishnavas in the universe.
तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अग्रगण्य वैष्णवों में से एक हैं.
He is very psychic.
तो वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्तर पे कार्य करते हैं.
He is not an ordinary deva.
वो कोई साधारण देव नहीं है.
He is the best of the devas. If you want to count him as a deva, he is the best of the devas.
तो अगर आप देवताओं में उनकी गणना करते हैं तो वो देवताओं में सबसे उत्कृष्ट देव हैं.
Actually, he is transcendental even to the designation deva.
तो हालांकि वो जो देव नाम की जो उपाधि है उससे दिव्य है.
So he has immense psychic power.
तो उनके पास बहुत ही अत्यंत मात्रा में मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं.
He always knows what's going on.
उनको पता है कि क्या हो रहा है.
If for any reason there was something he did not know by psychic power, Lord Vishnu within his heart or Krishna Govinda lets him know what's going on and gives him his, marching orders.
तो अगर उनको कुछ नहीं भी पता है तो उनका जो योगिक बल है उससे भगवान विष्णु उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं ताकि वो जान पाए कि क्या हो रहा है.
Like if an army has to go somewhere, they're given by the general marching orders.
तो अगर किसी सेना को आगे बढ़ना होता है तो जो उसके जो प्रमुख होते हैं सेना अध्यक्ष होते हैं वो उनको आदेश देते हैं आगे बढ़ने के लिए.
So Lord Vishnu and Lord Krishna Govinda, they give the marching orders. That is, they give the instructions to Narada where they want him to go and what they want him to do. This is all done through the heart.
तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण वो इस सेना प्रमुख की तरह कार्य करते हैं जो कि सेना को आज्ञा देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए. उसी प्रकार से भगवान नारद मुनि को ये आदेश देते हैं उनके हृदय के अंतर कि उनको आगे क्या करना है.
So poor Devaki and Vasudev, they're acting like ordinary human beings.
तो जो दीन देवकी और
वसुदेव
हैं वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसे वो बहुत ही हीन स्थिति में हैं.
Because they're under yoga maya.
तो हालांकि ये सब योग माया के अंतर्गत है.
They have no idea what happened to the 7 sons that were killed before. They have no idea.
तो उनको पता नहीं है कि उनके जो 7 शिशुओं का वध हुआ उनके साथ क्या हुआ है.
But Narada Muni, he knew.
लेकिन नारद मुनि को पता है.
Actually, they were devas.
क्योंकि वो जो थे वो 7 शिशु वो बहुत ही महान देव थे.
Do some difficulty. It was a curse, was it not?
Yes. तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके कारण उनको श्राप मिला था.
They had to come down to this planet and be killed by Kamsa due to curse. But Devaki Devasi, they didn't know this.
तो उन वो जो 7 शिशु थे उनको स्वर्ग लोकों से नीचे आना पड़ा था क्योंकि उनको एक प्रकार का श्राप मिला था और देवकी और वसुदेव को यह पता नहीं था.
This is the power of yoga maya.
तो ये योग माया की शक्ति है.
Great souls like Devaki and Devaki and Vasudev, they cannot be under Mahamaya like us.
तो जो महान आत्माएं होती हैं जैसे देवकी और सुदेव हैं वो हमारी तरह महामाया के अंतर्गत नहीं होते.
Yoga Maya means internal potency of the Lord.
योग माया का मतलब है जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है.
Superior energy.
वो उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की.
So when we're covered by Maya, it is Mahamaya.
तो अगर हम जो माया जिसके अधीन है उसको महामाया कहते हैं.
महामाया means the material energy.
महामाया का मतलब है भौतिक शक्ति.
But here in this verse is the beginning of a description of the advent of Subhadra Devi.
तो ये जो श्लोक है ये व्यक्त करता है सुभद्रा देवी के उद्घाटन का.
She is one of the forms of Yoga Maya.
वो महामाया की एक रूप है.
If you want to make Krishna consciousness mundane, you're only going to become confused.
तो अगर आप कृष्ण भावनामृत को भौतिक धरातल पर देखेंगे तो आप बिल्कुल ही असमंजस में पड़ जाएंगे.
How the devotees are covered by yoga maya is a great mystery.
किस प्रकार से जो भक्त हैं योग माया के अधीन होते हैं ये एक बहुत बड़ा रहस्य है.
Even all of us sitting here today, we are covered by a combination of yoga maya and mahamaya.
यहाँ तक कि आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब योग माया और महामाया के अधीन कार्य कर रहे हैं.
माया माया बीइंग द मटेरियल एनर्जी मींस वी रिमेन इन द बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ सो मच इंस्ट्रक्शन एंड हियरिंग सो मच.
तो जो महामाया है उसका उसका क्या प्रभाव है कि हम अपने आप को इस शरीर से पहचान करते हैं.
दैट्स महामाया.
ये महामाया है.
स्ट्रिक्टली मटेरियल एनर्जी.
बिल्कुल ही कठोर रूप में
भौतिक.
लेकिन यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं वो योग माया के अधीन भी कार्य कर रहे हैं.
You might say, Maharaj, come on, you know, how can it be both?
तो आप कह सकते हैं कि महाराज दोनों कैसे संभव है.
Well, this is a great mystery. I don't think anybody here can answer that question.
तो ये बहुत बड़ा रहस्य है. मुझे नहीं लगता यहाँ पर बैठा कोई भी भक्त इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है.
The answer is because we are not ultimately under the jurisdiction of the material energy. Download this.
तो आप इस चीज को अपने मन में डाउनलोड कर लीजिए कि हम सब जो है वो महामाया के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे.
Those fallen souls who are 100% under the jurisdiction of material energy. They cannot be connected with yoga maya. They cannot. There's no connection.
तो जो जीवात्मा 100% भौतिक प्रकृति के अधीन कार्य कर रहा है वो योग माया से उसका संबंध नहीं हो सकता.
Unless you want to go to a very high level of perspective.
अगर आप एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच जाते.
To do that, you'd have to say that this whole material cloud is under yoga maya also.
तो ये कहने के लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा भौतिक बादल है वो महा योग माया के अधीन है.
You might respond by saying, "Come on, Maharaj, what is this nonsense?"
तो आप कह सकते हैं कि महाराज आप ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं.
It's the material energy.
ये तो भौतिक शक्ति है.
All the elements, earth, water, fire, air, mind, intelligence, false ego, ether, everything, and the process of creation is described in great detail in Srimad Bhagavatam.
तो श्रीमद् भागवतम में ये जितने भी प्रकार के भगवान की शक्तियां हैं जिसमें कि पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश खम
क्लाउड ऑफ मटेरियल एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ महाविष्णु.
तो इन सब का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है और ये जो भौतिक
शक्ति
है वो महाविष्णु के शरीर से बाहर निकलती है.
It comes out on seed form and enters into the womb of Durga Devi.
तो ये बीज रूप में भगवान के स्वरूप से निकलती है और दुर्गा देवी के अंदर प्रवाहित हो जाती है समाहित हो जाती है.
Illustration is there in the Bhagavatam how through the glance of Mahavishnu how the living entities are pregnated into the womb of Mayadevi.
तो श्रीमद् भागवतम में इसका चित्र रूप में विवरण है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के एक कटाक्ष से ये जो भौतिक प्रकृति है वो दुर्गा देवी के अंदर समाहित हो जाती है.
But try to understand this whole thing is just a pastime also, different type of pastime.
तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये एक प्रकार की लीला है भगवान की.
Just like you can eat ice cream.
जैसे कि आप मलाई बर्फ खाते हैं.
There's strawberry ice cream, There is vanilla ice cream. So many different kinds of ice cream are there.
तो कई प्रकार के अलग अलग ice creams होते हैं, अलग अलग flavors के.
Different flavors.
अलग अलग उनका स्वाद होता है.
Similarly, under Yoga Maya, different flavors of Leela are at different levels are taking place. Try to understand.
उसी प्रकार से योग माया के अधीन अलग अलग प्रकार की लीलाएं घटित हो रही हैं.
In other words, the intimate pastimes, the confidential pastimes of Braj, they're obviously in a different category of Leela from the process of creation of the material cloud.
तो दूसरे शब्दों में जो भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं और ये जो भौतिक सृष्टि की संरचना की जो लीलाएं हैं ये दोनों अलग अलग हैं.
How is that pastime?
तो ये कैसे ये लीला कैसे घटित होती है?
Because everything the Supreme Lord does is a pastime.
क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो एक लीला है.
So if he glances at the material energy Durga Devi,
तो अगर वो दुर्गा देवी के ऊपर कटाक्ष करते हैं,
that's a pastime.
तो ये भी एक लीला है.
But it's not on the same level as the pastimes of Braj.
लेकिन ये उस तरह की लीला नहीं है जो कि भगवान व्रज में
करते
हैं.
So everything is a pastime.
तो हालांकि सब कुछ लीला है.
This is understood by the self-realized souls.
तो ये जो आत्म साक्षात्कार जीवात्माएं होती हैं उनके द्वारा समझा जाता
है. Even those devotees who become most perfect through sadhana bhakti and rise up that way by the mercy of Guru.
यहाँ तक कि वो भक्त भी जो साधना भक्ति को पूर्ण रूप से जिसका पालन करते हैं वो भी स्तर तक पहुंच सकते हैं गुरु की कृपा से.
It is said that such great souls who have achieved perfection in devotional service.
ऐसा कहा जाता है कि वो दिव्य आत्माएं जो पूर्णता को प्राप्त करती हैं,
they can step over the entire cloud of mahatattva.
वो जो महत्त्व है इसके ऊपर पहुंच सकते हैं.
That means material energy, the sum total of material energy, also described in Bhagavatam in great detail.
तो जो महत्त्व है वो संपूर्ण भौतिक शक्ति का एक स्वरूप है जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है. और ये बहुत ही वैज्ञानिक
scientific, slowly the mundane scientists are slowly beginning to think, well, maybe there's more to the mixture than we understand. Yes.
जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है उसके अंदर ही बहुत गहराई है.
So what happens when the soul who is going up by Guru Kripa you must be knowing.
तो क्या होता है जब कोई जीवात्मा गुरु कृपा से ऊपर की ओर बढ़ता है?
Mercy of the spiritual master.
गुरु कृपा का मतलब है जो गुरु हैं उनकी कृपा.
Spiritual master means your Diksha Guru, Siksha Guru, and Guru Parampara, the whole Guru Parampara. When we say Guru, we mean the entire Guru Parampara, because there's no such thing as a Guru who's acting independently.
तो जो आध्यात्मिक गुरु कहने का तात्पर्य है कि जो आपके दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, या वास्तव रूप में सारी जो गुरु परंपरा है, क्योंकि जो कोई भी गुरु होंगे वो गुरु परंपरा से हटकर कुछ नहीं करते.
Nowadays there are so many charismatic personalities with long hair, earrings, and who could speak very nicely English language.
तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों को बहुत आकर्षित करते हैं अपनी वेशभूषा के कारण, जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी या बहुत ही सुंदर व्याख्यान के द्वारा.
Collecting crores of money, how to you can do meditation for 21 minutes cost you.
तो वो लोगों को सिर्फ ये सिखाकर कि आपको किस प्रकार से ध्यान करना है करोड़ों रुपए अर्जित कर रहे हैं.
You must be seeing these advertisements on your mobile phone.
तो आप लोग अपने मोबाइल फोन में ऐसे मैसेजेस देखते
होंगे. Very aggressive.
ये बहुत ही आजकल इसका प्रचलन है.
But they're not under Yoga Maya.
लेकिन वो योग माया के अधीन नहीं है.
They are agents of Durga.
वो दुर्गा देवी के.
Because they cannot tell anyone, they cannot say anything how to get free from Sarasara cycle.
और वो ये भी नहीं बता सकते आपको कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, संसार चक्र है, इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं.
If somebody is actually a bona fide spiritual master, they must be able to tell you how to get out of the material energy. If they can't do that,
अगर कोई प्रमाणिक गुरु होगा तो उसका लक्षण क्या है कि वो आपको बता सकेगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकलना है. अगर वो नहीं कर सकते इसका मतलब वो प्रमाणिक नहीं है.
So historically there have been so many feel good gurus.
तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जो लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं.
They're almost always Indian.
और उसमें से अधिकतर जो होते हैं वो भारतीय ही होते हैं.
Well educated, and so when they speak English and they ensnare all those that speak English, Westerners, and rich Indians and all that.
तो वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता है, तो वो जो विदेशी लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनको भी आकर्षित करते हैं, या जो अमीर घराने के भारतीय हैं उनको भी आकर्षित करते हैं.
Such personalities have shocked you, no doubt about it.
तो ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनके अंदर कुछ शक्तियां जरूर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है.
Where is that shakti coming from?
और वो शक्ति आती कहां से है?
महाशक्ति.
वो आती है महाशक्ति से.
Supreme Personality of God is through material energy.
वो परम पुरुषोत्तम भगवान और उनकी भौतिक प्रकृति के द्वारा.
It's not spiritual.
लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है.
But they are empowered.
लेकिन वो उनके अंदर शक्ति का आवेश है.
By who?
लेकिन किसके द्वारा?
By Durga Devi.
दुर्गा देवी के द्वारा.
She gives the potency.
वो उनको वो शक्ति प्रदान करती हैं.
So they can get millions of followers to feel good, grow. You feel good. You follow these charismatic personalities. You temporarily feel good.
तो वो ताकि वो लाखों शिष्य बना सके, और उनको वो शक्ति प्रदान की जाती है दुर्गा देवी द्वारा ताकि वो लोगों को अच्छा महसूस करा सके. लेकिन वो जो अच्छा महसूस होता है वो थोड़े समय के लिए ही होता है.
Pay 50,000 rupees and you get a meditation 21 minutes a day. You can feel good for 21 minutes a day. This is not a very good deal.
तो वो 50,000 रुपए लेते हैं और एक ऐसा ध्यान करने का तरीका बताते हैं जिससे कि आप 21 मिनट तक बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा लेन देन नहीं है.
महर्षि महेश योगी, he was like that.
तो महाराज बता रहे हैं कि एक महर्षि महेश योगी थे, वो इसी प्रकार के योगी थे.
श्रील प्रभुपाद would not call him महर्षि.
तो श्रील प्रभुपाद जी उनको महर्षि नहीं कहते थे.
Perhaps you know महर्षि means great sage.
शायद आपको पता हो कि महर्षि का मतलब होता है एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु.
So Prabhupada was not going to call him. He was not a bona fide guru. Therefore, Prabhupada called him Mahesh Yogi because his middle name Maharishi Mahesh Yogi. So Prabhupada only called him Mahesh Yogi. We not call him Maharishi.
तो इसीलिए प्रभुपाद जी उनको कभी महर्षि महेश योगी कहके नहीं बुलाते थे, जो कि उनका पूरा नाम था. प्रभुपाद जी उनको हमेशा महेश योगी कहके बुलाते थे.
What he is doing was actually very sinful.
क्योंकि वो जो कर रहे थे वो बहुत ही पाप पूर्ण था.
He was selling Gayatri Mantra Bija.
वो बीज गायत्री मंत्र को बेच रहे थे.
An apparad, it's a sin. It was a great sin.
तो ये सिर्फ अपराध नहीं है, बहुत बड़ा पाप है ये.
It was interesting because some of his top disciples asked him confidentially.
तो हालांकि ये बहुत रोचक है क्योंकि उनके कुछ जो सबसे ऊपर के शिष्य थे उन्होंने उनसे पूछा.
Gurudev, what is the highest truth?
उनसे पूछा कि गुरुदेव जो सबसे उत्कृष्ट सत्य है वो क्या है.
Interestingly, he gave an honest answer.
तो रोचक तौर पे उन्होंने एक बहुत ईमानदारी पूर्वक उत्तर दिया.
He said the highest truth is Radha and Krishna.
उन्होंने बताया कि जो सबसे उत्कृष्ट सत्य है वो है राधा और कृष्ण.
He did not tell that to everybody.
लेकिन वो ये चीज हर किसी को नहीं बताते थे.
These were his top disciples.
उन्होंने अपने जो कुछ बहुत ही उनके ऊपर के शिष्य थे उनको बताया था.
So they were sincere.
तो वो बहुत ही गंभीर थे.
So they asked him, where can we learn about Radha and Krishna?
तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम कहां से राधा और कृष्ण के बारे में जान सकते हैं.
He gave an honest answer.
तो उन्होंने इसका भी एक ईमानदारी पूर्वक उत्तर दिया.
You have to go to Bhakti Vedanta Swami.
आपको भक्ति वेदांत स्वामी के पास जाना होगा.
Shri Prabhupada ki jai. So they took shelter of Srila Prabhupada, became initiated disciples.
तो वो लोग जो हैं श्रील प्रभुपाद जी के अंतर्गत आगे और श्रील प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य बन गए.
But most of these charismatic personalities, they're not going to tell their followers the highest truth is Radha and Krishna. They're not going to say that.
लेकिन अधिकतर ऐसे जो प्रभावशाली लोग होंगे वो अपने शिष्यों को ये नहीं बताएंगे जो कि वास्तविक सत्य है वो राधा और कृष्ण है.
Because they're under the material energy.
क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं.
Well, Mahesh Yogi was also under material energy, but when he goes, when he left his body, so he already went before the court of Ramaraj.
तो वो जो महेश योगी था हालांकि वो भी भौतिक प्रकृति के अधीन कार्य कर रहा था और जो उन्होंने शरीर छोड़ा वो.
So in the court of Yamaraj, he got some credit for saying the name of Radha and Krishna.
तो वो जब यमलोक गए होंगे तो उनको जरूर कुछ पुण्य मिला होगा क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण का नाम लिया था.
And directing his men to Srila Prabhupada. For that, in the court of Yamaraj, he got credit.
और क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद की तरफ निर्देशित किया था इसलिए उनको कुछ जरूर पुण्य फल मिलेंगे.
Sinful reaction for selling Gayatri Bija, very great sin.
लेकिन जो उन्होंने गायत्री बीज मंत्र को जो बेचा था वो एक बहुत बड़ा पाप किया था.
Each person you had to pay in those days $35, now it would be about $200.
तो उस समय उन दिनों अगर किसी को महेश योगी से ये मंत्र लेते थे तो $35 दिया करते थे. आज के डेट में उसका वैल्यू $200.
Each person was told this is your private mantra.
और हर व्यक्ति को यही बताते थे कि ये आपका व्यक्तिगत मंत्र है.
It's a secret, don't tell anybody.
और ये एक रहस्य है, आप किसी को बताइएगा मत.
But it was not a private mantra, it was Gayatri Bija.
लेकिन ये एक व्यक्तिगत मंत्र नहीं था, ये तो गायत्री का बीज मंत्र था.
So for that there was sinful reaction, big karma.
तो इसीलिए उसके लिए उनको जो है वो पाप पूर्ण फल मिले.
Besides he died a multi-millionaire. What is the use?
अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अरबपति है और उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या फायदा ऐसे धन का?
Because he was not using that money in the service of the Supreme Personality of Godhead, for that he had to get 100% karma.
और अगर वो अपने धन का इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं करता है तो उसका उसको 100% कर्म फल भोगना होगा.
So this is the yoga maya. This material nature is also a type of yoga maya if you look at it from the highest standpoint.
तो ये जो भौतिक प्रकृति है ये भी योग माया का ही एक विभाग है अगर आप ऊपर के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे.
The highest standpoint is the so-called material energy. Is the energy of the Supreme Personality of Godhead, and the Lord and His energy are non-different. Therefore, the so-called material energy, that's why we say so-called material energy, is a manifestation also of Yoga Maya.
तो जो सबसे उत्कृष्ट विचार है वो ये है कि इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है. तो अगर उस दृष्टिकोण से देखे तो ये जो महामाया भी है वो भी योग माया का एक विभाग है.
You say, Maharaj, that can't be. It's mundane. It's material elements. How can it be under Yoga Maya?
तो आप कह सकते हैं कि महाराज ऐसे कैसे संभव है? ये तो भौतिक है. ये कैसे आध्यात्मिक शक्तियों के अंतर्गत हो सकती है?
Again, we'll say because it's a pastime of the Lord. It's the pastime of Mahavishnu. That is not the same league of pastime of Raja Leela. Not the same league, but it is also pastime. Because Mahavishnu is also Purusha, enjoyer. He's enjoying Brahma's creation. He enjoys.
लेकिन हम इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि ये जो सब कुछ है वो महाविष्णु की लीला है. हालांकि जो व्रज की लीला है और इस लीला में बहुत अंतर है, बट फिर भी ये भगवान की लीला है. और जो महाविष्णु है वो एक पुरुष अवतार है भगवान के. वो इसलिए है ताकि वो चीजों का भोग कर सके.
दिस मटेरियल नेचर इज एक्सपेंशन ऑफ योग माया.
तो ये जो भौतिक शक्ति है वो योग माया का ही एक विस्तार है.
When the self-realized soul achieves complete perfection and devotion to the Supreme Lord,
जब कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपनी योग की पूर्णता को प्राप्त करता है भगवान के प्रति,
then it is said that the entire Mahatattva shrinks down to the size of the amount of water and a footprint of a calf.
तो जो ये संपूर्ण जो महत्तत्व है उसका जो स्वरूप होता है उसका जो साइज होता है वो एक बछड़े के खूड में जितना पानी आता है उसके बराबर हो जाता है.
5 or 6 centimeters only.
जो कि आप समझ सकते हैं 5 से 6 meter का उसका खूड का साइज होता है.
Unless it's under the principle of yoga maya, how is that possible? You see?
अगर वो योग माया के अधीन नहीं होगा तो ऐसा कैसे संभव है?
There's a story about Markandeya Rishi.
तो मार्कंडेय ऋषि के बारे में एक बहुत सुंदर कथा है.
I think it's in the book by Thakur Bhaktivinod.
तो महाराज कह रहे हैं कि मेरा ऐसा सोच है कि इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा जो रचित पुस्तक है नवदीप धाम महात्म.
Markandeya Rishi had a relationship of friendship and servitorship with the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu.
तो जो मार्कंडेय ऋषि हैं उनका साख्य भाव था भगवान श्री विष्णु जी के साथ.
But he was a spotless pure devotee of the Lord.
लेकिन वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे.
So he had no experience of material energy.
तो इसलिए उनको भौतिक शक्ति का कोई आभास नहीं था.
Innocent, you could say.
तो हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि बहुत ही सच्चे थे.
So he asked Lord Vishnu, my dear Lord, I want to understand by revelation how your material energy is working. In other words, I want to experience Maya. Because it's so mysterious and so wonderful, I want to experience it so I can understand how your energy is working. He's asking Lord Vishnu.
तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ये जो माया शक्ति है वो कैसे इतनी रहस्यमयी है.
Lord Vishnu is like a kind father, you know.
तो भगवान विष्णु एक बहुत ही कृपालु पिता के समान है.
He says, I don't really think this is a good idea.
तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता ये एक बहुत अच्छा विचार है.
But out of intense curiosity, he was acting like a little kid that No, I want to see.
तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको बहुत उद्विग्नता होती है कि नहीं मुझे जानना है मुझे देखना है.
Not a good idea.
तो हालांकि ये बहुत अच्छा विचार नहीं होता.
Just like when Lord Shiva wanted to see Mohini Murti.
जैसे कि जब भगवान शिव मोहिनी मूर्ति स्वरूप को देखना चाहते थे भगवान के.
The sexiest female that ever appeared within the material nature.
जो सबसे सुंदर स्त्री आज तक इस पूरे भौतिक सृष्टि में हुई है.
The only female incarnation of Lord Vishnu.
जो भगवान की एकमात्र जो स्त्री का स्वरूप है.
Lord Shiva also has friendly relationship with Lord Vishnu.
तो भगवान शिव का भी विष्णु भगवान विष्णु के साथ साख्य भाव रस है.
My dear Lord, I want to see your form of Mohini Murti. I missed it, you know. He was elsewhere when she appeared, so he missed her advent.
तो भगवान शिव हैं, उन्होंने भगवान का जो मोहिनी मूर्ति रूप था वो देख नहीं पाए थे क्योंकि उस समय वो किसी और स्थान पर थे. तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, मैं आपका ये रूप देखना चाहता हूँ.
भगवान
विष्णु ने बोला कि देखो, ये एक अच्छा विचार नहीं है.
You may lose your cool.
तो हो सकता है आप अपना जो धैर्य है वो खो बैठे.
She's very beautiful.
क्योंकि वो बहुत सुंदर है.
Says, what? Come on. Give me a break. I'm famous for austerity and penance and sense control. What do you mean I might lose my cool?
तो भगवान शिव ने बोला कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपको पता नहीं मैं बहुत ही प्रसिद्ध हूँ अपने धैर्य के लिए, अपने इंद्रियों के संयम के लिए.
As well as it's my full yoga my energy, you may lose control of your senses.
तो भगवान विष्णु ने बोला कि ये देखो, ये मेरी पूर्ण योग माया शक्ति है, हो सकता है आप अपना धैर्य अपना आत्म संयम खो बैठे.
Says, no, not me. You forget who you're talking to. You're talking to Almighty Bhagavan Shiva, who is famous for austerity, penance, sense control. There's no question, no problem. Please show me. I want to see.
भगवान शिव ने कहा कि शायद आप भूल गए हैं आप किससे बात कर रहे हैं. आपको पता नहीं मैं भगवान शिव हूँ और मैं बहुत ही प्रसिद्ध हूँ अपने आत्म संयम के लिए, अपने तप के लिए और अपने इन चीजों के लिए. मुझे कुछ नहीं होगा, आप इसके बारे में चिंता मत करिए.
So Lord Vishnu goes, okay, if you insist.
तो ठीक है, भगवान विष्णु बोले ठीक है अगर आप बहुत ही जिद कर रहे हैं.
So he revealed the form of Mohini Murti to Lord Shiva.
तो उन्होंने मोहिनी मूर्ति रूप का दर्शन कराया भगवान शिव को.
As predicted, he lost his cool completely.
और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी किया था, उन्होने अपना धैर्य खो दिया भगवान शिव ने.
Too sexy, too beautiful.
तो वो बहुत ही सुंदर बहुत ही आकर्षक थी.
As she's running, I mean, she didn't have any choli on apparently.
तो और वो भाग रही थी.
She's running and so her clothes start falling off, you know. The wind is blowing and her clothes are.
तो जब वो भाग रही थी तो क्योंकि हवा चल रही थी तो उनके जो वस्त्र हैं वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे.
Lord Shiva is salivating just like a dog.
और जो भगवान शिव है जैसे कुत्ता अपनी जीभ निकाल के और उसके जीभ से लार गिर रहा होता है उस प्रकार से करने लगे.
He's running after her for sex.
और वो उनके पीछे मैथुन के लिए भागने लगे.
He can't catch her, she's too fast.
और लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत तेज भाग रही थी.
I don't know if any of you can say where, what other shastra, the speed of the Lord is described. Anybody not remember?
आप में से किसी को पता है वो कौन सा शास्त्र है जिसमें भगवान का जो गति है, भगवान की जो स्पीड है उसका वर्णन है?
इशुपनिषद.
ईशो उपनिषद में इसका वर्णन है.
Clearly states that the Lord can overcome all others running. It's clearly stated. So there we see in the pastime of Mohini Murti, she was running too fast and he was going insane because he wanted to have sex with her but he could not catch her. He was literally trying to catch her physically, couldn't do it.
तो ईशो उपनिषद में बताया गया है कि भगवान जितने भी तेज भागने वाले लोग हैं उन सबसे तेज हैं और हम देख सकते हैं इस मोहिनी मूर्ति के अवतार में कि भगवान शिव उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो इतना तेज भाग रहे थे कि वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे.
Lord Vishnu took the opportunity to show who's the boss.
तो भगवान विष्णु ने ये मौका इसका लाभ उठाया ये दिखाने के लिए कि देखो बॉस कौन है.
Purposely in the form of Mohini Murti, He ran in front of all the sages, all the great sages, even Vyasadeva, others, who were in different forests and different enclaves. He purposely ran in front of them.
जान बूझ कर वो जो है वो सारे जितने भी महान ऋषि मुनि थे उनके आगे से निकले.
He wanted them to see who was the actual supreme authority.
वो दिखाना चाहते थे कि आप देखो कि वास्तविक रूप में जो परम पुरुषोत्तम है वो कौन है.
So Lord Shiva is running after this almost naked woman who is Lord Vishnu. Of course, the sages know who she was.
तो जो ये मोहिनी रूप था भगवान का वो लगभग नग्न अवस्था में भाग रहे थे और भगवान शिव उनके पीछे भाग रहे थे. हालांकि जो ऋषि मुनि थे उनको पता था कि ये रूप कौन सा है भगवान का.
So the great and mighty Bhagwan Shiva making a complete ass of himself in front of all the greatest sages in the universe.
तो भगवान शिव जो कि कहने के लिए परम पुरुषोत्तम है वो अपना खुद का मजाक बना रहे थे इन सारे ऋषि मुनियों के सामने.
So the story of Markandeya Rishi is something different.
लेकिन जो मार्कंडेय ऋषि हैं उनकी जो कथा है वो थोड़ी अलग है.
He's saying, "My Lord, I want to see your material energy, please. I don't know anything about it. You know, I want some actual revelation. What is your material energy all about?"
तो वो भगवान विष्णु से बहुत ही बार बार निवेदन कर रहे थे कि मैं आपकी भौतिक शक्ति को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे दिखाइए.
Again, Lord Vishnu says, "This is not a good idea."
फिर भगवान विष्णु ने बोला कि देखो ये एक बहुत अच्छा विचार नहीं है.
No, no, I want to see.
लेकिन वो ऐसा जिद करने लगे नहीं मैं देखना चाहता हूँ.
So when the devotee insists on something, some of the soft-hearted lord will oftentimes he will show something.
तो अगर कोई भगवान से बहुत जिद करता है तो कई बार भगवान उनको दिखाते हैं कुछ.
So next thing, Markandeya Rishi, the whole scene changes and he finds himself floating in the ocean of devastation of the universe.
तो अगले ही सीन में ऐसा क्या होता है कि मार्कंडेय ऋषि अपने आप को पाते हैं कि पूरे सृष्टि का विनाश हो रहा है और वो उस बीच में है.
Great suffering for about 10,000 years.
और 10,000 सालों तक बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ रहा है.
I'm almost certain it's Navadvipa Mahatmya where this is described.
तो मुझे पूरा पूरा यकीन है लगभग कि ये नवदीप धाप महात्म्य में इसका वर्णन है.
Because floating in this ocean of devastation, there was an island.
तो इस जो ये जो समुद्र था जो कि पूरे सृष्टि का विनाश कर रहा था उसके अंदर तैरता हुआ एक छोटा सा द्वीप था.
Yes, Navadvip Dham, not subject to the destruction of the universe. So it's because it's spiritual.
नवदीप धाम जो कि किसी भी प्रकार का जो प्रलय होता है उससे ऊपर है वो था वो क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है.
And Srila Bhaktivinoda Thakur explains that this Navadvip Dham was created by Srimati Radharani.
और Srila Bhaktivinoda Thakur इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये जो नवदीप धाम है इसका जो सृजन है श्रीमती राधा रानी के द्वारा किया गया है.
It's a long story.
तो ये एक बहुत ही लंबी कहानी है.
But after being knocked around and suffered greatly in the ocean of devastation,
तो जो प्रलयंकारी जो समुद्र थी उसमें बहुत ही प्रकार के कष्ट भोगने के बाद तो जो मार्कंडेय ऋषि हैं उन्होंने नवदीप धाम का शरण ग्रहण किया.
And then finally, after so many thousands of years,
और अंततः कई हजारों सालों के बाद
the whole scene evaporated.
तो जो समुद्र था वो धीरे धीरे करके उसका वाष्पीकरण हो गया.
The whole illusion vanished.
तो ये जो सारा जो रचना था भगवान के द्वारा जो मोह का रचना था.
And then he saw himself sitting comfortably in his cottage.
तो ये जो समुद्र है धीरे धीरे करके ये वाष्प में बदल गया और उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने अपने आप को अपने कुटिया में बैठा हुआ पाया.
As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says in his perfect infallible poetic language.
और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान में बताते हैं.
Referring to this material mahatattva and everything that takes place within it.
और ये जो भी भौतिक महातत्व का इसमें वर्णन है उसका वो उसके बारे में वो बताते हैं.
He says, and the whole show is only temporary.
वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब बहुत ही क्षणिक है.
It's a show created by Maya.
ये जो भी रचना है ये माया के द्वारा रचित की गई है.
Just like there's so many magic shows.
जैसे कई प्रकार की जादुई कलाएं होती हैं खासकर यूएस अमेरिका में महाराज बता रहे हैं.
They're masters of illusion.
वो अपने कला में इस माया की कला में बहुत ही पारंगत होते हैं.
Sometimes huge illusions that they manage to create.
वो कई इस प्रकार के ऐसी भ्रामिक स्थिति उत्पन्न करने में दक्ष होते हैं.
They're fallen souls surrounded by material energy.
हालांकि ये सब गिरे हुए आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, जो कि माया के अधीन हैं.
But somehow or other they know the science how to create incredible magic.
लेकिन उनको पता होता है कि किस प्रकार से ऐसी असोचनीय जो जादू हैं, जादू की कलाएं प्रस्तुत करें. So as far as material energy is concerned,
the whole show is only temporary.
तो जहां तक इस भौतिक प्रकृति का सवाल है, भौतिक शक्ति का सवाल है, ये सब कुछ बहुत क्षणिक है.
So that material energy is appearing in the form of Subhadra Devi.
तो ये जो भौतिक शक्ति है वो सुभद्रा देवी के रूप में प्रकट होती है.
And she's appearing before Kamsa.
और वो अवतरित होती हैं कंस के लिए.
Kamsa, King Kamsa picks up this tiny little baby.
तो जो कंस है वो उस छोटे से बच्चे को उठाते हैं.
And he dashes her on the floor.
और उसको जमीन पर पटक देते हैं.
Thinking that she's an ordinary baby.
ये सोचते हुए कि ये एक सामान्य बालिका है.
And phoomp, up comes Durga Devi with all her weapons. This will be described.
और उसी समय दुर्गा देवी अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ अपना स्वरूप
Because that's who Subhadra is. So we don't have any separate need to worship Durga Devi as millions of Hindus are worshipping Durga. We are worshipping Subhadra. She is the source of Durga.
So वो सुभद्रा देवी हैं. तो कई सारे जो हिंदू हैं कहने के लिए वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं अलग से. लेकिन भक्तों को अलग से दुर्गा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सुभद्रा देवी की पूजा करते हैं और वही दुर्गा देवी की
Subhadra is one of the names of Kali. Bhadra is one of the names of Kali.
Bhadra है वो काली, काली का एक नाम है.
So we're worshipping Subhadra.
तो हम जो है वो Subhadra की पूजा करते हैं.
The word Su means auspicious.
तो Su का मतलब है मंगलमय.
So Subhadra, she is a supreme goddess with we can't understand Subhadra. She's too mysterious.
तो जो Subhadra है वो भगवान की परम पुरुषोत्तम शक्ति है स्त्री रूप में, लेकिन हम इसको इतनी आसानी से नहीं समझ सकते.
One of my god brothers, sannyasis, is writing a book on Subhadra, doing intense research in multiple sastra because she's so difficult to understand. So he's writing a book.
तो मेरे एक जो गुरु भाई हैं, जो कि सन्यासी हैं, वो सुभद्रा देवी के ऊपर एक पुस्तक लिख रहे हैं और इसके लिए उनको बहुत रिसर्च करना पड़ रहा है क्योंकि जो सुभद्रा देवी हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है. तो कई सारे शास्त्रों से
Subhadra assumes this ghastly form of Kali in front of Kamsa and he becomes confused.
तो जो सुभद्रा देवी है वो काली का ऐसा भयावह रूप लेती है कंस के सामने.
So Srila Prabhupada explains the word Kala is significant.
तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि काल शब्द महत्वपूर्ण है.
Although the child was born to kill Kamsa, Kamsa thought that this was the proper time to kill the child so that he himself would be saved.
यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए.
So here Prabhupada explains why Subhadra, that is to say, why Durga Devi Kali is worshipped all over the world.
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि क्यों सुभद्रा देवी हैं, जो कि काली, काली के रूप में पूरे विश्व में इनकी पूजा की जाती है.
Kala is actually another name of the Supreme Personality of Godhead.
तो जो काल है वो भगवान का ही दूसरा नाम है.
When he appears only for the purpose of killing, that's interesting. Huh?
जब वे केवल वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं.
So of course, Krishna is Kala Rupa.
तो वास्तविक रूप में जो कृष्ण है वो काल रूप है.
He is the form of time.
वो काल का ही एक रूप है.
Kala also means time.
काल का मतलब है समय.
So in the form of time, the Supreme Personality of Godhead is killing everyone in this material world, or he may be killing big, big demons like Hiranyakashipu, Hiranyakshak.
तो समय के रूप में भगवान इस पूरे भौतिक संसार में हर चीज का वध करते हैं और वे बड़े बड़े राक्षसों का भी वध करते हैं.
So Prabhupada is explaining that Kala is another name of Krishna for killing purposes. So he's killing everybody who has got a material body. It's the mysterious energy of Lord Vishnu.
तो श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए भगवान के इस काल रूप का वर्णन करते हैं क्योंकि समय के साथ हर चीज को विनाश करते हैं, हर चीज को मार देते हैं.
Prabhupada continues, When Arjuna inquired from Krishna in his universal form, Who are you? The Lord presented himself as Kala, death personified, to kill.
जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा आप कौन हैं तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूं.
By nature's law, when there is an unwanted increase of population, Kala appears, and by some arrangement of the Supreme Personality of Godhead, people are killed wholesale in different ways.
तो प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध महामारी दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं.
By Kala, they are killed by Kala wholesale. Wholesale, Prabhupada uses the word wholesale. Wholesale killing of, by the will of the Lord, Vishnu.
तो प्रभुपाद जी यहाँ इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि बड़ी संख्या में तो काल के प्रकट होने से बड़ी संख्या में ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है भगवान के द्वारा.
In different ways, by war, pestilence, famine, and so on.
अन्य अन्य कारणों से जैसे कि युद्ध महामारी दुर्भिक्ष इत्यादि.
Now I've previously explained that there's a problem now with volcanoes all over the world are more active than they have been in the past hundreds of years. They're coming up now, active volcanoes all over the planet at all kinds of places. This is a very bad sign. This is due to sinful activities. Kala is reacting.
तो जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया है कि आज के समय में पूरे संसार में जो ज्वालामुखियां हैं वो बहुत ही एक्टिव हो गई हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ही प्रकार के गलत कार्य बढ़ रहे हैं तो इसीलिए पूरे संसार के अंदर जो बहुत सारे ज्वालामुखियां हैं वो बहुत ही एक्टिव स्टेट में पहुंच
गई. People ask, what can a few thousand Hare Krishna devotees do? What can they accomplish? What's your accomplishment? What's your gift to the world? What are you doing anyways? What's your practical result of chanting Hare Krishna?
तो लोग कई बार भक्तों से पूछते हैं कि आप इतने हजारों लोग हरे कृष्ण का जप करते हो आपका इस पूरे विश्व के लिए क्या दान है पूरे विश्व के समाज के लिए लोगों के लिए आप क्या कार्य करते हो.
The answer is, oh, few million Hare Krishna devotees around the world, they are preventing the planet from being destroyed, that's all.
तो उत्तर यह है कि ये जो कुछ लाखों जो चंद भक्त हैं हरे कृष्ण के इनके प्रयास से जो पूरी सृष्टि है उसका विनाश होने से बचा हुआ है.
But you say, come, they say, the skeptic will say, come on, Maharaj, that's a huge exaggeration. What's your evidence?
तो कोई कह सकता है कि महाराज आप तो बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं.
Evidence is that Mother Earth is extremely angry at the weight of the sinful persons on this planet. She is Earth personified. She is extremely angry. Shastra says she cannot bear the weight of so many sinful persons. She wants to blow.
तो साक्षी ये है कि जो जो पृथ्वी देवी हैं, जो कि पृथ्वी के स्वरूप हैं, देवी के रूप में वो बहुत ही गुस्से में हैं, क्योंकि वो इतने सारे जो पाप कर्मों के फल है उसका सहन नहीं कर सकती इसीलिए वो अपने आप का विनाश विस्फोट करना चाहते हैं.
The largest volcano in the world is located in the United States. People don't know that. The largest volcano in the world located in the United States out in the countryside. Doesn't matter it's in the countryside, Yellowstone Park. You know, it's way out in a remote countryside. Doesn't matter.
तो जाने की बात यह है कि जो United States of America है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसी देश में सबसे बड़ा विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसी देश के अंदर है. हालांकि वो एक शहर के अंतर नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
It's been something like 650 years since that volcano went off.
तो आज से लगभग 650 साल पहले वो जो ज्वालामुखी है वो शांत हो गया था.
Boiling.
लेकिन अब उसके अंदर बहुत उबाल आ रहा है.
Melted rock, lava.
वो जो लावा है जो कि जो पत्थर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रूप में होते हैं.
Because Mother Earth is angry.
क्योंकि जो पृथ्वी माता है वो बहुत ही क्रोधित है.
She wants to blow.
तो वो विस्फोट करना चाहती हैं.
But the scientists say, if the volcano actually blows, then the whole North America is destroyed.
और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये ज्वालामुखी फटी तो पूरे संयुक्त राष्ट्र का विनाश हो जाएगा.
So why she's not blowing? She's extremely angry.
तो वो क्यों अपना विस्फोट नहीं कर रही है जबकि वो बहुत क्रोधित है.
Because there are a few thousand devotees in North America chanting Hare Krishna.
क्योंकि नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका में कुछ हजार भक्त हैं जो कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं.
Therefore Krishna warns Bhumi Devi, I'm ordering you, don't blow.
तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो भूमि देवी हैं उनको कहते हैं कि नहीं ये मेरा आपको निर्देश है कि आप अपना विस्फोट ना करें.
Because then all my temples in North America will be destroyed. There'll be no more prasadam distribution. All my devotees will be killed. So therefore, I order you, don't blow.
क्योंकि अगर आप अपना विस्फोट कर देंगी तो जितने भी मंदिर हैं वहां पे उत्तर अमेरिका में उनका विनाश हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार का प्रसादम वितरण नहीं होगा. इसलिए मेरा आपसे निर्देश है कि आप अपने आप को विस्फोट ना करें.
Very difficult for her because, you know, but she has to surrender because he's the boss.
तो हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भूमि देवी है उनको भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ता है क्योंकि भगवान असली मालिक है.
I don't have time to tell the story about how Prithvi Maharaj had an encounter with Mother Earth.
तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको वो लीला बता सकूं, कहानी बता सकूं जो जिसमें कि पृथ्वी महाराज
और पृथ्वी.
तो आप श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में इसका वर्णन आता है, उसको पढ़ सकते हैं.
So she was angry and would not produce any grains, fruits and like that.
तो जो भूमि देवी हैं वो बहुत ही क्रोधित थी, इसलिए वो किसी प्रकार का अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी.
Prithvi Maharaj said, I'm giving you your sacrifices now. Give it up, stop it, stop this nonsense. You're getting your sacrifices now. The activities of cruel King Venu are over.
तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि अब हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं, आपको आहुति दे रहे हैं, और जो महाराज वेन थे उनके जो गलत कार्य थे वो अब समाप्त हो चुके हैं.
So rest of the story.
तो ऐसी लीला का वर्णन है उसमें.
So she wanted, refused, and he was ready to kill the earth, Mother Earth personified.
तो क्योंकि जो पृथ्वी माता है वो मना कर रही थी, तो महाराज पृथ्वी तैयार थे उनका वध करने के लिए.
She said, "You can't do that. I'm a woman. It's forbidden in Shastra."
तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक स्त्री का वध नहीं कर सकते, शास्त्रों में इसका विरोध किया गया है.
He was Shakshvas avatar. That means Jiva empowered, Jiva with superpowers. Superpowered in Jiva, not Vishnu Tattva.
तो वो जो पृथ्वी महाराज हैं वो भगवान के शक्त्यावेश हैं, वो भगवान नहीं है लेकिन शक्त्यावेश हैं.
He said, I don't care, I'm going to kill you anyways.
तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको मारूंगा.
She says, but you can't do that, I'm the earth. If you kill me, then the whole earth, I'll just disintegrate into, my body will disintegrate into dust, and all your citizens that you want to protect, they'll all die. So you can't kill me.
तो उन्होंने बोला कि आप मेरा वध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरा वध कर देंगे तो ये जो पूरी पृथ्वी है और इस पे रहने वाले जो भी आपके प्रजा है सबका विनाश हो जाएगा.
He says, yes, I can.
तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कर
सकता हूँ. Because with my mystic power, I will assume the form of the earth. See, this jiva can do these things. Sakyavishavara can do. Ordinary yogis cannot do like this. He could assume the form of the entire earth and sustain all the living entities by his mystic power, though he was Vishnu. He was jiva, not Lord Vishnu.
तो पृथु महाराज जो कि एक जीव है लेकिन वो भगवान के द्वारा आवेशित शक्ति के स्वरूप में है, तो उन्होंने बोला कि मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा विनाश कर सकता हूँ और मैं खुद पृथ्वी का स्वरूप धारण कर लूंगा.
So Prabhupada's point is very clear. Kala appears by some arrangement of the Supreme Personality of Godhead. People are killed wholesale in different ways.
तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भगवान है वो काल के रूप में प्रकट होते हैं और ऐसी व्यवस्था बनती है कि भारी संख्या में लोगों का विनाश हो जाता है.
Point is, it's the will of Lord Vishnu. He doesn't have to come personally. He just kills demons through the agency of the material energy.
तो ऐसा नहीं कि भगवान को स्वयं प्रकट होना होता है, वो अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा कई सारे असुरों का, राक्षसों का विनाश करते हैं.
People are dying in volcanoes in like Indonesia, for example.
तो जो लोग हैं वो ज्वालामुखी फटने से मर रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया में.
Now just the latest thing is a volcano going off in Chile, South America. So point is the whole world is ready to explode.
तो अभी चिली जो कि दक्षिण अमेरिका में एक जगह है वहां पे भी एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है. तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा सृष्टि है
absolutely nothing that the atheistic scientists can do about it. Nothing.
और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी नास्तिक लोग हैं या वैज्ञानिक लोग हैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते.
Only a few million people chanting.
बस केवल जो कुछ लाख लोग हैं जो कि जप कर रहे हैं वही कुछ कर सकते.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Could save the whole planet, certainly.
यही पूरे सृष्टि को बचाएगी.
But if there's not enough devotees chanting, trouble. Like in Indonesia, Java. There's a few handful of devotees in Java, Indonesia islands.
लेकिन अगर भक्त जप नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. जैसे कि जावा जो जगह है वहां पे कुछ गिने चुने भक्त हैं.
Big volcano went off there.
तो वहां पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया.
Lot of destruction.
और बहुत विनाश हुआ.
That all those islands, Indonesia, including Bali, they're volcanic islands, all of them, with active volcanoes.
तो वहां पे जितने भी ये जो द्वीप हैं इंडोनेशिया और इस प्रकार के वहां पे बहुत सारे ज्वालामुखियां हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं.
There's an active volcano in Bali.
तो बाली में भी एक बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी थी.
It was rumbling. I want to blow. Smoke coming up, steam coming up. Angry earth, very angry. Because there, Bali, unfortunately, the people are non-vegetarian.
तो जो बाली है वहां पे भी एक इस प्रकार की ज्वालामुखी थी जो कि बिल्कुल ही अपने आप को विस्फोट करने के लिए तैयार थी. तो जो बाली देश है वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मांस भक्षण करते हैं.
So Mother Earth is very angry because of the cow killing.
तो इसलिए जो पृथ्वी माता है वो बहुत क्रोधित है क्योंकि वहां पे गायों का वध किया जाता है.
So but the volcano was just rumbling, steam and smoke coming up.
तो वो जो ज्वालामुखी है उसके अंदर से बहुत ही धुआं और बहुत ही वाष्प निकल रहा है.
Why it didn't blow completely? She wanted to blow. She is Mother Earth. She wanted to blow. She's angry.
तो ये पृथ्वी माता है और वो अपना विस्फोट भी करना चाहते हैं. बहुत ही क्रोधित हैं. लेकिन क्यों उन्होंने विस्फोट नहीं होने दिया?
Why she didn't blow?
क्यों उन्होंने विस्फोट नहीं होने दिया?
One reason only.
एक कारण है बस.
There's a few thousand devotees in Bali saved the whole nation because of chanting Hare Krishna.
क्योंकि वहां पे कुछ हजार भक्त हैं जिन्होंने उस पूरे देश को बचाया हुआ है क्योंकि वो हरे कृष्णा का जप करते हैं.
This is our contribution to the planet.
तो ये हमारा निवेश है, ये हमारी पूरे संसार को देन है.
So Kala appeared before Kamsa.
तो जो काल है वो कंस के सामने प्रकट हुए.
He wanted to know who are you?
तो वो जानना चाहता था कि कौन है आप.
So the Lord presented himself as death personified to kill by nature's law. So all this killing is going on around the world.
तो भगवान ने कहा मैं साक्षात काल हूँ और प्रकृति के नियम है कि जब अवांछित रीति में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है.
At that time when there's all these disasters going on, even atheistic political leaders go to church.
उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजाघर.
They sense that maybe God is angry.
उनको भी ऐसा लगता है कि शायद भगवान नाराज हैं, क्रोधित हैं.
As if they have any brain at all, if they have intelligence, they understand, oh, this is the doing of God.
तो यहाँ तक अच्छी बात यह है कि उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो ये समझ पाते हैं कि ये सब भगवान.
But without a bona fide spiritual master, they have not got adequate guidance.
लेकिन क्योंकि उनके पास एक प्रमाणिक गुरु नहीं है इसलिए उनको जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान नहीं मिल पा रहा.
So, and these natural disaster, Prabhupada points out, even atheistic political leaders go to church, mosque, temple for protection from God or gods.
तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब इस प्रकार की बड़ी संख्या में जब लोगों का नाश होता है तो उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं.
They say God willing.
और वे कहते हैं कि जैसे
we can be saved from these disasters.
और वे ऐसा कहते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा, अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें बचा लेंगे.
But before that they pay no attention to God, not caring to know God or his will. But when Kala appears they say God willing.
तो किंतु इसके पूर्व भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते लेकिन काल के प्रकट होने पे वे कृपा मांगते हैं.
So here Prabhupada underscores the point. Death is but another feature of the Supreme Kala, the Supreme Personality of Godhead, Kalarupa.
तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जो मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है.
At the time of death, the atheist must submit to the Supreme Kala, and then the Supreme Personality of Godhead takes away all his possessions. Mrityu sarva hari harascham. And forces him to accept another body. Tata dehantara prapti.
मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं. मृत्यु सर्व हरश्च अहम, और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं तथा देहांतर प्राप्ति ही.
So Prabhupada points out that the atheists, if they know what's the cause behind all of this, the Supreme Lord or gods and goddesses like Kali and so forth, they neglect and so they may go on with their normal life after the disaster cools down a bit.
तो नास्तिक लोग इसे नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो उपेक्षा करते हैं जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सकें.
So Prabhupada points out this Krishna consciousness movement is trying to teach them that although for a few years one may act as a great protector or great watchman with the appearance of kala, death, one must take another body by laws of nature.
तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहें, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा.
Not knowing this, they unnecessarily waste their time and their occupation as watchdogs and do not try to get the mercy of the Supreme Personality of Godhead.
इसे न जानने के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं.
So what do the dogs do?
तो ये वो जो प्रहरी हैं वो क्या करते हैं?
So they are just simply barking. So the politicians are simply barking.
तो ये जो कुत्ते होते हैं जो ऐसे भौंकते हैं उसी प्रकार से ये जो नेतागण हैं वो भी भौंकते हैं.
So Prabhupada says it is clearly said, aprapaya maham nivirante mrityu samsara avartmane. Without Krishna consciousness, one is condemned to continue wandering in birth and death, and not knowing what will happen in one's next birth.
तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि स्पष्ट कहा गया है अपाप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि. कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ता है और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा.
We'll stop there. Any comments, questions?
तो हम यहाँ पे विराम देंगे. अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है.
ओके. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. करांचर श्रीमा भागवतम की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोलो.
परम पूजनीय भक्ति मधुर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय.